وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين صدق الله العلي العظيم الله تعالى فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ اور وَمْدُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ چلے جاؤ جہاں تم کو حکم دیا گیا ہے پیچھے مر کر نہ دیکھنا اور وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ اور ہم نے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا فیصلہ کہلا بھیجا کہ صبح ان لوگوں کو ختم کر دیا جائے گا ہؤلاء مقطوع ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی وجاء اہل المدینہ شہر صدوم والے صدوم کے علاقے والے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آ گئے قال ان ہؤلاء ضیفی لوط علیہ السلام نے ان شریروں سے کہا ہؤلاء ضیفی یہ تو میرے مہمان ہیں فلا تفضحون مجھے ذلیل نہ کرو واتقوا اللہ ولا تخزون اللہ سے ڈرو اور مجھ کو رسوا نہ کرو اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو قالوا اولم ننهك عن العالمین کہنے لگے کہ ہم نے تم کو دنیا والے لوگوں سے منع نہیں کیا ہے کہ آپ کے گھر نہ آنے دو ان کو قال ہؤلاء بناتی لوط علیہ السلام نے کہا اگر تم کو ایسا کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی بیٹیاں حاضر ہیں اللہ بھی کیا کہہ رہے لعمرک اے پیغمبر تیری جان کی قسم تیری زندگی کی قسم وہ اپنی مستی میں دیوانے تھے فأخذتهم الصيحة مشرکین سورج نکلتے ہی اللہ تبارک و تعالی نے یعنی چیخ نے چنگار نے ایک بہت بڑی آواز نے ان کو پکڑ لیا اور ہم نے بستی کو الٹ کر اوپر نیچے کر دیا اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی بے شک اس میں نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے آپ کے سامنے پارہ نمبر 14 اس کی آیتیں پڑھی گزشتہ کل آیت نمبر 66 تک پڑھا تھا آج آپ کے سامنے 75 تک میں نے پڑھا ہے اللہ پاک مجھے صحیح سچی بات کہنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرماوے گزشتہ کل بات یہاں تک پہنچی تھی اللہ تبارک و تعالی نے फरिश्तों को भेज दिया और बतला दिया, उनको बतला दिया कि अल्लाह के फरिश्ते क्या लेकर आए हैं। वजा अहलुल मदीनत यस्तबशिरून, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो अभी तक मोमिना नहीं थी, उसने जाकर बतला दिया हमारे घर में खूबसूरत नौजवान लड़के आए हुए हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मीकाईल, उनको क्या पता ये फरिश्ते थे, बस नौजवानों की शक्ल में गए लूत अलैहिस्सलाम के मकान पर। शहर के लोग आए खुशियां मनाते हुए, दौड़ते हुए मजे के साथ। यही कौम लूत अलैहिस्सलाम की कौम, ये सबसे खतरनाक अमल करने वाली, सबसे बड़ा गुनाह करने वाली कौम थी। और इसी कौम ने सबसे पहले यह गुनाह किया है, उससे पहले किसी कौम ने यह गुनाह नहीं किया जो इस कौम ने किया है। सूरतुल आराफ में अल्लाह ने इसको बयान किया है, मा सबककुम बिहा मिन अहदिम मिन अल आलमीन। दुनिया में से किसी ने यह काम पहले नहीं किया। उनकी शर्म हया खत्म हो गई, उनकी फितरत मस्क हो गई, उनके अखलाक की पस्ती का हाल देखो, जहां बैठते थे यही बातें करते थे। सूरह अनकबूत में है, वतातूना फी नादीकुम अलमुनकर, ये जहां कहीं मजलिस लगाते थे आपस में बैठकर यही बात करते थे लिबातत की। कोई मेहमान उनकी बस्ती में आ जाता तो उनका सामान छीन लेते। लिबातत के साथ साथ उनका एक काम यह भी था, वो आने वाले मेहमान का सामान छीन लेते थे और मार मार कर उनको खत्म कर देते थे। मुबस्सिरीन ने इस वाकये को नकल फरमाया है कि एक दफा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बड़ी बीवी हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने अपने एक खादिम को भेजा, जाओ सदूम इलाके में और हजरत लूत हमारे भतीजे की खबर लेकर आओ, क्या हालत है उनकी। ये खादिम जब सदूम के इलाके में पहुंचा जहां लूत अलैहिस्सलाम रहते थे, एंट्रेंस में ही देखा सदूम वाली कौम दूसरे एक मुसाफिर को मार रहे थे, सामान छीन रहे थे। ये जाने वाला खादिम उनको छुड़ाने के लिए गया कि भाई ये मुसाफिर है, इसको क्यों मारते हो। तो उन्होंने इस खादिम को पकड़कर इतना मारा कि जख्मी कर दिया। एक मर्तबा तफसीर में लिखा है कि एक मुसाफिर उनके इलाके से गुजर रहा था, क्योंकि इनका इलाका जो था वो बिल्कुल मेन रोड के ऊपर था। मिस्र वाले जब इराक जाते थे तो यही रास्ते से, मदीना वाले मक्का वाले जब जाते थे शाम में इसी रास्ते से, और बिल्कुल शहरा पर उनका ये उनकी बस्ती थी कि आने जाने वाले को पता है कि क्या हो रहा है। तो एक मर्तबा एक मुसाफिर गुजर रहा था, रास्ते में शाम हो गई, रात आ गई, तो ये मजबूरन सदूम वाले शहर में उसको रुकना पड़ा कि यहीं रुक जाता हूं, सुबह होगी आराम करके निकल जाऊंगा। उसके पास खाना भी था, पानी भी था, उसने पूरे शहर में किसी को नहीं कहा कि मेरी मेहमानी करो, मुझे खाना दो, मुझे पानी दो, या तुम्हारे घर में रखो। एक दरख्त के नीचे जाके आराम में बैठा। शाम का वक्त हो गया था, एक सदूमी आदमी, सदूम का रहने वाला आया और उसको बड़ा इसरार किया, इसरार बाय फोर्स उसको अपने घर ले गया, तेरी खिदमत करूंगा ये और वो। रात में उसको उसके एक कमरे में सुला दिया। सुबह होते देखा मुसाफिर ने उसका सामान, माले तिजारत और उसका घोड़ा, घड़ा जिस घड़े पर ये सफर कर रहा था, सब कुछ ले लिया। उस मुसाफिर ने शोर किया, शोर करने की वजह से उसकी कौन फरियाद सुनने वाला था? सारी बस्ती वालों की यह हालत होती है, कौन सुनता है, कौन सुनने वाला? अगर बस्ती ही पूरी इस तरीके से ऐसे काम में लगी हुई हो, किसी का माल छीनने में, किसी को मारने में, तो फिर वो कौन सुनने वाले हैं? वो तो एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। जैसे गुज़िश्ता कल मैंने व्हाट्सएप पर देखा, एक मुसलमान माशाल्लाह दाढ़ी वाला, कफनी जार वाला, उसकी बीवी पर्दे वाली, ये दोनों को क्वारंटाइन में 28 डेज रखा। 28 डेज। जब वहां होटल वाल हॉस्पिटल वालों ने उसको कागज लिख कर दे दिया कि तुम ठीक हो गए हैं, जाओ अपने गांव, ये गाड़ी में बैठकर जा रहे थे, रास्ते में उनको रोक दिया पुलिस ने, कहा तुम अपने गांव नहीं जा सकते, जहां से आए वापस जाओ। उन्होंने कहा हम हॉस्पिटल से आए और ये लेटर है। कहा नहीं, हम कुछ नहीं सुनेंगे, वापस चले जाओ। अब देखो, अब ये वापस आ रहे हैं तो आते हुए देखा एंट्रेंस के पास दूसरी पुलिस इधर खड़ी है, उधर गए 100 किलोमीटर तक, वापस कर दिया, उनके घर जाने नहीं दिया। इधर आए दूसरी पुलिस खड़ी, उन्होंने कहा जिधर से आए वापस उधर चले जाओ, न इधर के न उधर के, मगरिब का टाइम है, इफ्तारी का टाइम है, दोनों रोजेदार है, उनके पास कुछ पानी था, कुछ चीजें खाने की थी, वहीं रोड की साइड पर बैठकर उन्होंने इफ्तारी की। अब रात का वक्त है, कहां जाएं? इधर भी पुलिस जाने नहीं देती, उधर भी पुलिस जाने नहीं देती, तो करीब में गांव था, उस गांव में जाने लगे गाड़ी में बैठकर। गांव में पहुंचा तो गांव में किसी ने उसका वेलकम नहीं किया, कहा जाओ स्कूल है और उस स्कूल में रात गुजारो, फिर सुबह निकल जाना, हम तुमको नहीं रखेंगे हमारे गांव में। तो उसी मुसाफिर को पता होता है, जिसका घर है, जिसके पास सब कुछ है, मालदार है, खाना है, पीना है, लेकिन जब परेशानी का आलम हो तो फिर क्या होगा? ऐसे वक्त में उन्हीं को जाकर पूछो कि तुम्हारी रात कैसी गुजरी है। उनकी गाड़ी के पीछे लोगों ने पत्थर मारे, उसकी गाड़ी को खत्म कर दिया। आ देखो एक दूसरा वाकिया अजीब, एक औरत हिंदू है, लेकिन लॉकडाउन में शी वांट टू गिव बर्थ, अब 12-13 किलोमीटर चलते हुए जब ये हॉस्पिटल के पास जा रही है, हॉस्पिटल में देखा उसको खून की जरूरत है, खून कौन देगा? एक हवालदार पुलिस होता है, उसने देखा ये आदमी जा रहा है लॉकडाउन में, कहां जा रहे हो भाई, उसको स्टॉप किया पुलिस ने, नॉर्मल पुलिस ने स्टॉप किया। कहा ये देखो भाई, हॉस्पिटल का रिपोर्ट है, और मेरी बीवी को बच्चा होने वाला, लेकिन खून नहीं है, खून की जरूरत है, वरना बच्चा भी मर जाएगा, बीवी भी मर जाएगी। उस पुलिस ने कहा यार ये जो तुम्हारा खून का जो नंबर है उसका जो है और मेरा है, दोनों बराबर है, चलो मैं आता हूं खून देने के लिए। ये खून देने के लिए पुलिस खुद गया। उसके दिल में मोहब्बत आई, ये खुद गया, इसने खून दिया और उसके खून ने को जब डाला गया उस औरत में, उस औरत ने अच्छी तरह बच्चे को जना, माशाल्लाह हेल्थी बच्चा, औरत भी जिंदा रही, बच्चा भी जिंदा रहा, और ये पुलिस तो वापस चला गया। जब बड़े पुलिस को पता चला और उसके बाद डीएसपी को पता चला, उन्होंने इसको 11,000 रुपये इनाम में दिए, लेकिन ये देने वाला था कौन खून? ये एक मुसलमान था, सैयद अबू ताहिर था, उसने एक मिसाल पेश कर दी। अजीब सैयद अबू ताहिर हवालदार है ये, उसने खून को पेश किया, औरत
एक हिंदू औरत की जान बचाई और बच्चे की जान बचाई और उसको 11,000 रुपये डीएसपी बड़े पुलिस ने दिए, वापस हॉस्पिटल गया और उस औरत के हाथ में दे दिया, ये 11,000 भी तू रख ले तो हॉस्पिटल का जो खर्चा है इसको अदा कर देना। ऐसे मिसाल पेश करने वाले आज भी होते हैं। उन गरीबों की हालत क्या होती है, हमें तो माशाल्लाह हॉस्पिटल का सब कुछ मिल जाता है, खाना पीना सब कुछ अल्लाह पाक ने हमें दिया है। उन गरीब मुल्कों में जाकर देखिए, उन गरीब जो सुबह से शाम में कमा करके खा लेते हैं, किसी के घर में खिदमत कर ली, काम कर लिया, बर्तन धो दिए, घर की सफाई करके शाम को जो रोटी मिल गई अपने बच्चों को खिला दिया, और कोई रोजगार रोजाना काम करने वाला काम करता है, ऐसे लोगों को कहां से खाना मिलेगा। और जैसे आज मैंने सुना, एक औरत ने अपने दो बच्चों के साथ भूख की वजह से दोनों बच्चों को और अपने आप को कुएं में डाल दिया, कुएं में गिर गई। ये हालत थी सदूम इलाके वालों की कि जो भी मुसाफिर गुजरता, रात गुजारता तो उसको पकड़ लेते, मारते मार देते, यहां तक कि उसके कपड़े निकाल लेते थे मरे हुए क्या, और कपड़े को भी इस्तेमाल करते और उसको नंगा वैसे ही दफन कर देते थे। यह हालत थी। एक मर्तबा एक गरीब आदमी सदूम इलाके से गुजर रहा था, लेकिन भूख की वजह से वो चल नहीं सकता था, सफर नहीं कर सकता था। उसने सदूम इलाकों में जाकर मांगना शुरू किया, लेकिन किसी ने उसको एक रोटी तक, एक लुकमा तक नहीं दिया। वो भूख की वजह से एक जगह बदहाल होकर, बेहोश जैसा होकर गिर पड़ा, चल नहीं सकता था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी ने इस फकीर गरीब को देखा तो उनकी साहबजादी ने यह हालत देखी तो घर जल्दी जल्दी गई, खाना लेकर आई और उसको खाना दिया। लूत अलैहिस्सलाम की साहबजादी और बेटी, बस्ती वालों ने देखा कि इसको खाना दिया है तो बस्ती वालों ने लूत अलैहिस्सलाम और उसकी बेटी को धमकियां दी कि अगर तुम लोग इन लोगों की मदद से बाज नहीं आए तो हम तुमको बस्ती से निकाल देंगे, तुम्हें बस्ती में रहने नहीं देंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह इसी को यहां बयान कर रहे हैं, वजाहलुल मदीना। इन लोगों की हालत तो देखो, इनको पता चला कि लूत अलैहिस्सलाम के मकान में खूबसूरत नौजवान बैठे हुए हैं, उससे हम लिबातत का, होमोसेक्सुअलिटी जिसको कहते हैं, ये काम करेंगे, नाउज बिल्ला, खतरनाक। और वो भी दौड़ते हुए, हंसते हुए, मजाक के तौर पर आ रहे हैं, कम इसको पकड़ेंगे, पकड़कर बाहर निकालेंगे।
قال إن هؤلاء ضيفي فلا تبدعون।
لوط علیہ السلام نے جواب دیا، یہ تو میرے مہمان ہیں، مہمان کی ناموس کی حفاظت میرے لیے ضروری ہے، اس کو نہ چھیڑو، میرے مہمان ہیں، هؤلاء ضيفي، مجھے ذلیل نہ کرو، مجھے رسوا نہ کرو، मुझे छोड़ दो, मेरे मेहमान को छोड़ दो। वत्तकुल्ला, अल्लाह से डर जाओ। वला तुकजूनी, और मुझे रुस्वा जलील न करो, मुझे हकीर न बनाओ। अगर मेहमान के साथ ऐसा होगा तो मुझ जैसे नबी की इज्जत क्या बाकी रहेगी, मेरा क्या होगा। चूंकि लूत अलैहिस्सलाम समझे ये तो नौजवान है, उनको क्या पता था कि ये अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, उन्हें कोई पता नहीं था, लेकिन मेहमान की हिफाजत के लिए बड़ी कोशिश की, बड़ी कोशिश की। यहां तक के कहा उनके साथ हाथापाई हुई, दरवाजा बंद कर दिया, उनको आने नहीं दिया, और वो नौजवान अंदर बैठकर देख रहे हैं। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि लूत अलैह सलाम ने मेहमानों को भी कहा, भाई क्या बात, तुम अजीब लोग हो, ये बदमाशों से, इन बदमाशों से, इन शरीरों से तुम्हारा मैं डिफेंस कर रहा हूं, तुम मेरी मदद नहीं करते। लूत अलैह सलाम तंग हो गए और परेशानी बहुत ज्यादा हो गई, तब जाकर के फरिश्तों ने कहा, जैसा कि सूरह हूद में है, कि तुम उन्हें छोड़ दो, हम नौजवान नहीं, इंसान नहीं, हम तो अल्लाह के फरिश्ते हैं, तुम उन्हें छोड़ दो, उनको आने दो। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम उनको रोक रहे थे, जैसे सूरह आराफ में है, उस बुरे काम से उनको रोकते थे, तो वो क्या कहते थे, इन्नहुम उनासु यतताहरून, बड़े पाक बने बैठे हो, अगर बहुत पाक हो तो बस्ती से निकलो, हमने तुमको कहा था कि तुम दुनिया में से किसी को भी अपने घर में बुला नहीं सकते हैं। कालू अवलम नहका, कि हमने तुमको नहीं रोका था कि दुनिया वालों में से कोई भी तुम्हारे घर पर ना आए, लेकिन डिफेंस करते रहे, डिफेंस करते रहे। यहां तक कि हजरत लूत अलैह सलाम ने फरमाया, हा उल्लाह बनाती, ये मेरी बेटियां हैं, कौम की बेटी, कौम की औरतें, कौम की बेटियां, कौम की औरतें अंबिया की बेटियां हुआ करती है, नबी की बेटी होती है, इसलिए कि नबी बाप के दर्जे में होता है। अरे तुम ये बुरा काम न करो, ये लवातत का काम न करो, इन औरतों के साथ निकाह करो और औरतों के साथ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करो, ये क्या काम कर रहे हो गलत, मर्द मर्द के साथ अपनी शहवत को पूरा करते हो, ये मेरी बेटियां हैं, इन कुंतुम फाइलीन, जाओ उनके पास जाकर निकाह करके अपना काम कर लो, अपनी ख्वाहिश पूरी करो। अल्लामा उबैदुल्लाह सिंधी अपनी तफसीर में लिखते हैं, इतनी इतनी खतरनाक कौम थी ये कि जानवरों से बदतर थी, जानवर भी ये काम नहीं करते। जानवरों में सिर्फ एक कौम है और वो बंदर, वो मंकीज है, उसके अलावा कोई कौम, कोई जानवर में से कोई मखलूक ये काम नहीं करती, और ये लोग वो जानवरों से बदतर है। चलो वो तो मंकीज है, ये तो इंसान है, ऐसा काम न पहले किसी इंसान ने किया न किसी जानवर ने, और ये कौम ये काम करती है। हजरत लूत अलैहि सलाम ने कहा, या हाउलाई बनाती, ये कौम की औरतें हैं, उनसे शादी करो, शादी करके अपनी शहवत को पूरी करो, ये क्या गलत काम करते हो। तो उस वक्त उन्होंने कहा, इन्नहुम उनासु यतताहरून, बड़े पाक बने हो, निकलो बस्ती से और इन मेहमानों को हमारे सुपुर्द कर दो। कुरान करीम में दूसरी जगह है, वलकद रावदूहु अन दैफिही, मेहमानों से उनको रोकते रहे, डिफेंस करते रहे, दरवाजा बंद कर दिया तो दीवार को कूदकर, वॉल को कूदकर अंदर में आए, और सुभान अल्लाह, वो नौजवान नहीं, वो तो जिब्रील थे, मीकाइल थे, इसराफील थे। फतमसना अयुनहुम फदूकु अजाबी वनुदर, सूरह कमर में अल्लाह ने बयान फरमाया,
जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक पर मारा, ही जस्ट हिट विथ वन विंग। अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को 600 पर दिए हैं। अल्लाह हैज गिवन जिब्राइल अलैहिस्सलाम 600 विंग्स। ही जस्ट कास्ट हिट वन विंग फतमसना आयुनहुम فَذُوكُوا عَذَابِي. The all of them who came in the house of Lut alayhi salam, they became blind. Subhanallah. They were running away. Ghabra gaye. Hazrat Lut alayhi salam se kaha, ghabrao nahi. Hum to bal jina kabhi ma kaanu fi yam tarun. They're rejecting, they're denying the punishment of Allah. Today we have arrived in your house, in your locality, in your city of Sodom, and we're sitting in your house. We are not normal human beings. We are the angel, have been sent from Allah tabarak wa ta'ala, and we brought the punishment, the same punishment what they are rejecting. Today we're going to show them what is the punishment of Allah. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. جیسے آپ کے سامنے گزشتہ کل سبق میں آیا, فاسر بأهلك. What Jibril صلی اللہ علیہ وسلم said, what Mikael said, what Israfil said, all the angels, Israel, ملک الموت, they sub, they all were there, and they says, don't worry, we brought a truthful message from Allah تبارک و تعالی, and we are truthful. We are the angel from Allah. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِكِتْءٍ مِّنَ اللَّيْلِ. Middle of the night, you and your daughters must leave the city and go away. وَاتَّبِ أَدْبَارَهُمْ أَيْلُوتْ عَلَيْهِ السَّلَامُ. You must walk behind, and your daughters walk front, and you must walk behind them. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٍ. And no one see at the back, no one watch at the back. اللہ اکبر. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ عذاب بڑا خطرناک ہونے والا ہے. آپ صرف چلتے رہے. عذاب کب آئے گا؟ عذاب کب آئے گا؟ اللہ اکبر. جب سورج صبح صادق ہوگا, عذاب شروع ہوگا, اور سن رائز کے وقت میں عذاب ختم ہو جائے گا, جس کی طرف اشارہ کیا سورۃ القبر میں. اللہ اکبر. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام مڈل آف دا نائٹ نکل گئے اپنے بیٹیوں کے ساتھ, اور ادھر سے جس بستی میں جانے کا حکم دیا تھا وہاں جا رہے ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کون سی بستی ہے وہ, کہا دوبارہ ارض مقدس جہاں ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے, ان علاقوں میں واپس جانے کا حکم دیا. اللہ اکبر. کتنا خطرناک کام یہ لوگ کرتے تھے کہ اللہ نے نبی کی جان کی قسم کھائی ہے. اللہ نے فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اے میرے نبی, تمہاری زندگی کی قسم, لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, یہ لوگ اپنی مستی میں دیوانے ہو رہے ہیں. دیکھو تو سے, لوط علیہ السلام کے مکان میں بیٹھنے والے نوجوان فرشتہ جو انسانی شکل میں بیٹھے ہیں, جبرائیل, میکائیل, اسرائیل, اسرافیل, مینی مو, ان کے پاس آئے اپنی مستی پوری کرنے کے لیے, لباطت کے لیے. اللہ اکبر. سوال ہوتا ہے کیا کوئی ایسی ہستی گزری ہے جن کی قسم جان کی اللہ نے کھائی ہو؟ دنیا میں کوئی نبی, کوئی نہیں جن کی جان کی قسم کھائی ہے. یہ صرف اور صرف مقدس ہستی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جن کی جان کی قسم کھائی. لعمرک, اے میرے نبی, تیری جان کی قسم, تیری زندگی کی قسم, देखो ये किन को, लूत अलैहि सलाम की कौम को, अपनी मस्ती में दीवाने और पागल बने हुए हैं। बाज़े मुफस्सिरीन ने या एक और कॉल भी नकल किया है कि इशारा किया लामरु का, तेरी जान की कसम, तेरी जिंदगी की कसम, देखो मक्का वाले कैसी दीवानगी में पड़े हुए हैं, आप जैसे नबी की इतनी मुकद्दस हस्ती जिनको देखकर भी ईमान लाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ज्यादा सही कौल यही है कि अल्लाह तबारक व ताला कुरान को नाजिल कर रहा है इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके सामने लूत अलैहि सलाम की कौम की स्टोरी बयान करते करते अल्लाह कह रहे हैं तेरी जान की कसम, तेरी जिंदगी की कसम, ये देखो ये कौम लूत है कितनी मस्ती में, दीवानगी में और कैसे खराब अमल के अंदर में कि जानवर भी ऐसा काम नहीं करता, उसके अंदर में पड़ी हुई है। एक सवाल होता है, द क्वेश्चन अराइजेस, यहां पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाई, उनकी जिंदगी की कसम खाई और गैरुल्लाह की कसम खाना बिल्कुल जायज नहीं है, इट्स नॉट परमिसिबल एट ऑल to take the oath beside Allah anyone's. Quran Kareem mein bahut sari jagah hai, kabhi Allah ne farmaya teen ki anjeer ki kasam, kabhi zaitoon ki kasam, kabhi la uqsimu bihad al balad मक्कतुल मुकर्रमा की कसम, वह अंतहिल्लुम बिहादल बलद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस प्रेजेंट इन मक्का, उनकी कसम, बहुत सारी कसम खाई। उसका जवाब मुफस्सिरीन ये देते हैं, अल्लाह खुद मालिक है, ये हुक्म बंदों के लिए है कि तुम गैरुल्लाह की कसम न खाओ, ये हुक्म बंदों के लिए है, मखलूक के लिए, कि तुम अल्लाह के अलावा किसी की कसम खा नहीं सकते। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अक्समा लिगैरिल्लाही फकद अशरका, जिसने अल्लाह के अलावा किसी की कसम खाई उसने शिर्क का काम किया, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कसम खानी है। बुखारी शरीफ में है, मुस्लिम शरीफ में है, इमाम कुर्तुबी ने तफसीर कुर्तुबी में इस रिवायत को भी नकल किया है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने एक मरतबा अपने बाप की कसम खा रहे थे, अपने फादर की कसम खा रहे थे, अल्लाह के हबीब ने सुना तो फरमाया, उमर अल्लाह के अलावा किसी की कसम खाना जायज नहीं है, मना फरमा दिया। न किसी नबी की कसम, न किसी वली की कसम, न किसी जिन की कसम, न किसी फरिश्ते की कसम, न किसी बाप की कसम। बाज़ मर्तबा कहते हैं ना, अरे भाई रोजी पर बैठा हूं रोजी की कसम, अरे यार दुकान पर बैठा हूं मेरी दुकान की कसम, अरे अपने बच्चे के सर पर हाथ रखकर कहते हैं मेरी औलाद की कसम और मेरी बीवी की कसम, ये किसी किस्म की कसम खाना जायज नहीं है। मन अक्सम लिगैरिल्लाही फकद अशरका, जो अल्लाह के अलावा दूसरे की कसम खाएगा उसने अल्लाह के साथ दूसरे को शरीक किया, अल्लाह की जात से बढ़कर कोई नहीं है जिनकी कसम खाई जाए। हां अल्लाह जिसकी चाहे कसम ले ले, वो चाहे वह तीन कहें, वो चाहे वह जैतून कहें, वो चाहे लाउक्सू बिहाजल बलद कहें, और वो चाहे कह दे लामरु का, ए मेरे नबी तेरी जिंदगी की कसम। अल्लाह अकबर। इमाम राजी ने लिखा है, अल्लाह ने इब्राहिम अलैहि सलाम को खलील बनाया, मूसा अलैहि सलाम को कलीम बनाया, ईसा अलैहि सलाम को रूहुल्लाह बनाया, आदम अलैहि सलाम को सफीउल्लाह बनाया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हबीबुल्लाह महबूब बनाया, अपना चहीता, अपना महबूब। सवाल होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की अगर कसम खाई है तो क्या खसूसियत है। अल्लाह ने ऐसी कसम तो जैतून की भी खाई है, वतीन की भी खाई है, मक्का की भी खाई है। तो उसका जवाब मुफस्सिरीन फरमाते हैं, जिस चीज की खत्म कसम खाई जाती है उसके अफराद को देखो, जैसे वह तूर पहाड़ की कसम खाई, गोया तूर पहाड़ सारे पहाड़ों से अफजल है, यह बताना चाहते हैं। अल्लाह पाक ने मक्का मुकर्रमा की कसम खाई, इशारा किया मक्का मुकर्रमा सारे शहरों से अवला है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की कसम खाकर इशारा कर दिया, मेरा नबी इंसानों में सबसे आला है, सबसे अवला है, उससे बढ़कर किसी की जिंदगी नहीं, उनकी जिंदगी की कसम खाई है। इसीलिए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान की कसम खाई, मालूम होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान की और जिंदगी से बेहतर दुनिया में किसी की जिंदगी नहीं है, उसी की तरफ इशारा फरमाया। लेकिन सवाल होता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी खसूसियात है, वो कौन सी खसूसियात है जिसकी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की कसम खाई है। इस पर कुरान करीम में भी है, अहादीस में भी है, बेशुमार वाकियात है जिसको अल्लाह खुद बयान करता है कि अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की कसम क्यों खाई है। हालांकि आपकी चेहरे की भी कसम है, चेहरे की कसम, आपके बाल की कसम, आपके दांत की, लेकिन यहां पर आपकी पूरी जिंदगी की कसम खाई है। उस पर बेशुमार अहादीस है, कुरान की आयतें हैं। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही तो यहीं से कल बयान करेंगे। लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमहून, और उसके बाद कैसा अजाब आया कौमे लूट पर उसको बयान करेंगे। और उसके बाद अल्लाह ने इस वाकिये को बयान करके यूं कहा, गौर फिक्र करने वालों के लिए इस वाकिये में बड़े लेसन है, बड़ी नसीहत है, और ये नसीहत ईमान वाले लेते हैं और वो लोग लेते हैं जिनको अल्लाह ने सही समझ अता फरमाई है। इस वाकिये में वाकिये को बयान करके बहुत सारी नसीहतें अल्लाह बयान फरमाते हैं। अल्लाह पाक मुझे और आपको, हम सबको बुराइयों से और इस किस्म के गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अब हम अल्लाह का जिक्र कर लेते हैं, सब मिलकर अल्लाह का जिक्र करें, और जिक्र के बाद इंशाअल्लाह दुआ होगी। अल्लाह ताला हम सब के जिक्र को, कुरान तफसीर सुनने को, बोलने को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ 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 اللہ
دعا کر لیتے ہیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك باسمك الله وباسمك الرحمن وباسمك البر الرحيم وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك يا حنان يا منان بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہم پر رحم فرما, یا اللہ ہم پر کرم فرما, یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین. جتنی عبادتیں کی جاتی ہے تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. یا اللہ ہمارا تفسیر کرنا, لوگوں کا گھروں پر بیٹھ کر سننا, ریسیور کے ذریعے سے, مکسلر کے ذریعے سے جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں, اے اللہ سب کا سننا قبول فرما. اس قرآن کی برکت سے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما, اس قرآن کی برکت سے اللہ ہمیں برکتیں نصیب فرما. اے اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے لیے, ہماری اعلیٰ اولاد اور نسلوں کے لیے, نسلوں کے لیے اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما, ہدایت کے فیصلے فرما. یا اللہ ہمارے روزی روزگار میں بے انتہا برکت نصیب فرما. یا اکرم الاکرمین ہمیں کثرت سے اے اللہ تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما, تیری ہر نعمت پر تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں بہتر سے بہتر تیرے سامنے عبادت کی ہمیں توفیق نصیب فرما. اے اللہ سجدوں کے مزے نصیب فرما, نمازوں میں, قرآن تلاوت میں, ذکر اللہ میں, اے اللہ صدقات میں, عبادتوں میں اے اللہ اخلاص نصیب فرما, اخلاص نصیب فرما. اے اللہ ہم اخلاص سے کورے ہیں, الہ العالمین اخلاص سے کورے ہیں, ہمارے پاس کوئی بھی ایسا اے اللہ اخلاص والا سجدہ نہیں ہے. ہماری عبادتیں تو ریاکاری سے بھری پڑی ہے, اے اللہ دکھلاوے میں بھری پڑی ہے. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم ہی سے قبول فرما, اپنے رحم و کرم ہی سے قبول فرما. ہمارے اعمال کو نہ دیکھ اے اللہ, ہمارے اعمال کو نہ دیکھ. ایمان بھی کمزور, یقین بھی کمزور, اعمال اور عبادت بھی کمزور ہے. اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے, اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے, اپنے رحم و کرم سے قبول فرما لے. اے اللہ تو نے
جنت کے دروازے کھول ہی دیے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، اے الہ العالمین شیاطین کو جکر دیا ہے، الہ العالمین تو نے فرشتوں کو اعلان کر دیا روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے، اے اللہ درندے پرندے، اے اللہ سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہے روزے دار کے لیے، اے اللہ اسے معلوم ہوتا ہے تو معافی کرنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، تو کالی ہاتھ لوٹانے سے شرم کرتا ہے، اے اللہ ہماری جھولیاں بھر دے، ہماری مرادیں پوری فرما، ہماری امیدیں پوری فرما، اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مشکلوں میں پھنسے ہیں اے اللہ سب کی مشکلوں کو دور فرما، اے اللہ جو بغیر قصور کے جیلوں میں قید و بند ہیں اے اللہ رہائی کی صورتی پیدا فرما، بہت سارے علماء صلحاء نیک اور صالحین جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں بغیر قصور کے، اے اللہ ان کی رہائی کی صورتی پیدا فرما، اے اللہ ان کی رہائی کی صورتیں پیدا فرما، اے اللہ سالوں سے وہ جیلوں میں بند ہیں، اللہ ان کے سینوں میں علم ہے، ان کے سینوں میں قرآن ہے، وہ تیرے نبی کے ورثہ میں سے ہیں، اے اللہ رہائی کی صورتیں پیدا فرما، غریبوں کے لیے، یتیموں اور بیواروں کے لیے، اے اللہ تو آسانیاں پیدا فرما، تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی رحمان رحیم ہے، تجھ سے بڑھ کر کون رحم کرنے والا، کون کریم ہو سکتا ہے، تو ہی تو ہی مغفرت کرنے والا، تو ہی رحمت کی چادر ڈالنے والا ہے، اللہ امت کے حال پر رحم کر دے، امت کے حال پر رحم کر دے، تجھے تیری رحیمیت کا واسطہ افطاری میں دیتے ہیں، الہ العالمین اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہے تیرے نبی کا فرمان ہے، اے اللہ تجھے تیری قریبیت کا واسطہ، تجھے تیری رحیمیت کا واسطہ، تجھے تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ، تجھے تیری صفات اعلیٰ کا واسطہ، تجھے تیری شان اور تیری کبریائی کا واسطہ، تجھے تیری جلال کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیرے عرش اور تیرے نبی کا واسطہ، تجھے تیرے نبی کے چار چہیتے صحابہ کا واسطہ، خلفائے راشدین کا واسطہ، تیرے نبی کے پیارے صحابہوں کا واسطہ، تجھے ہماری مائیں امہات المومنین کا واسطہ، اے اللہ ان کی پیاری بیٹیاں، اے اللہ زینب رقیہ فاطمہ کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ امت کے حال پر رحم کر دے، امت کے حال پر رحم کر دے، ہم امتحان دینے کے قابل نہیں ہیں، تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف کر دے، معاف کر دے، ہماری اعلی اولاد، ہمارے ماں باپ اور سارے امت کو معاف کر دے، اور پریشانیاں بیماریوں کو دور کر دے، اے اللہ چھینی ہوئی نعمت واپس دے دے، چھینی ہوئی نعمت واپس دے دے، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، حافظ قرآن بنا، سینے میں قرآن جمع دے، سینے میں قرآن جمع دے، قرآن یاد کرنا یاد رکھنا آسان فرما دے، اے اللہ خادم دین بنا، اے اللہ نیک اور صالحین میں سے بنا، مومنین مومنات میں سے بنا، اولیاء کاملین میں سے بنا، اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، جو بات کہی جاتی ہے سنی جاتی ہے عمل کی توفیق نصیب فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اور شرور سے پناہ مانگی ہے اے اللہ اسے ہماری حفاظت فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.